पूज्य सुखदेव महाराज यहाँ पधारे हैं, आपको यहाँ बैठना चाहिए। ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्य भगवान् व्रजेशतमियस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज सुबह श्यामानंद प्रभु का तिरुभाग दिवस है। दुनिया में देखा जाता है कि अनेक धर्मों के जितने भी मसीहा या संत हुए हैं उनके बारे में काफी जानकारी दुनिया भर में है, काफी प्रचार प्रसार उनका चलता रहता है। ईसाई धर्म में, इस्लाम धर्म में या यहां पर हिंदू धर्म में भी कई ऐसे हैं जो भले वैष्णव न भी हों परंतु फिर भी बहुत प्रसिद्ध हैं। परंतु चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं, विशेष करके जो इस गौड़ी वैष्णव परंपरा में जो बड़े संत हुए हैं, उनके बारे में ज्यादा जानकारी समाज में या दुनिया में नहीं है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि कम से कम हम सब इस्कॉन के भक्त हमारे इन पूर्वज आचार्यों के बारे में अच्छी तरह से जान लें, सुन लें, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा धन है। ऐसे महान आचार्यों और भक्तों के द्वारा ही तो ये परंपरा चलती आई है, और ऐसे भक्त अगर न होते तो हो सकता है परंपरा कहीं टूट जाती, या इतने सारे अच्छे ग्रंथ न होते, न तो इतना अच्छा प्रचार होता जिससे कि आज कृष्ण भक्ति इतनी फैली हुई है भारत भर में और विश्व भर में भी। तो हमारे पूर्वज आचार्यों में से एक महत्वपूर्ण आचार्य हैं श्रील श्यामानंद प्रभु। ये देखा जाता है कि समय समय पर भक्ति के सिद्धांतों का नाश हो जाता है या अपप्रचार हो जाता है, कोई गलत सिद्धांत रखते हैं सामने, और शुद्ध वैष्णव सिद्धांतों को तोड़ मोड़ कर कुछ अलग ही प्रस्तुत करते हैं समाज के सामने। ऐसे तरह तरह के अपसंप्रदाय भी पैदा होते रहते हैं समय समय पर। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ऐसी कोई व्यवस्था करते हैं कि या तो वह स्वतः अवतीर्ण होते हैं या अपने नित्य पार्षदों को भेजते हैं सही सिद्धांतों को पुनः स्थापित करने के लिए और गलत सिद्धांतों का खंडन करने के लिए। क्योंकि इस भौतिक जगत में हर अच्छी चीज का घटन होना यह स्वाभाविक है। जब तक कि आध्यात्मिक शक्ति बार बार नहीं लगाया जाता, तब तक इस दुनिया में भौतिकता का प्रभाव और माया का प्रभाव फैलता रहेगा। इसलिए भक्तों को चाहिए कि इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहने के लिए और हमें और आध्यात्मिक शक्ति लगानी चाहिए, तब ये माया का विरोध हो पाएगा और सारे विश्व भर में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार हो पाएगा। जब श्री कृष्ण यहां पर वृंदावन में आए थे, उन्होंने सारी दुनिया को दिखाया कि सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या चीज है, ब्रजवासियों के माध्यम से वृंदावन क्या है और वृंदावन की लीला क्या है। फिर जब से श्री कृष्ण का तिरुभाव हुआ, उसके बाद प्राय सभी लोग वृंदावन को भूल गए। अनेक राजा आए और गए, अनेक साधु आए और गए, थोड़े ही गिने चुने थे जो यहां पर आया करते थे वृंदावन में। परंतु वही श्री कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना पड़ा और उन्होंने फिर वृंदावन का पुनः प्राकट्य किया, और फिर उन्होंने अपने षड गोस्वामी शिष्यों से कहा कि आपको पुनः वृंदावन की लीला स्थलियों को फिर से प्रकट करना चाहिए, यहां पर मंदिरों का निर्माण कर अर्चा विग्रह की सेवा की स्थापना करनी चाहिए, वैष्णव आचार संहिता लिखनी चाहिए, शास्त्रों से अलग अलग प्रमाण सामने रख के, और ऐसे आपको खूब भक्ति का प्रचार करना चाहिए। तब षड गोस्वामी जब यहां आए तो उन्होंने बहुत ही दृढ़ता से महाप्रभु के सिद्धांतों को पुनः स्थापित कर दिया। लेकिन फिर एक समय आया जबकि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का तिरुभाव हो चुका था, यहां पर जीव गोस्वामी वृंदावन में प्रमुख वैष्णव आचार्य थे, परंतु बंगाल उड़ीसा में जहां से कि महाप्रभु के आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वहां पे काफी कुछ अपसंप्रदाय अपना मुख ऊपर कर रहे थे, लोग वैष्णवता को भूले जा रहे थे। हालांकि फिर भी जानवा माता जैसे महान वैष्णव वहां पर थे, फिर भी और भी प्रचार करने की आवश्यकता थी बड़े पैमाने पर। और उस समय वृंदावन में तीन महानुभाव आए, तीन महान भक्त आए। उनका नाम था श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु। श्रीनिवास आचार्य वैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे, नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य थे और श्यामानंद प्रभु हृदय चैतन्य महाशय के शिष्य थे। इन तीनों गुरुओं ने अपने शिष्यों को जीव गोस्वामी के पास भेजा था प्रशिक्षण के लिए, क्योंकि उस समय जीव गोस्वामी जो कि बहुत बड़े विद्वान वैष्णवाचार्य थे, ऐसे कहा जाता है कि सारे दुनिया में, सारे इतिहास में वो सबसे बड़े दार्शनिक हुए हैं, तो उनके चरण कमलों में इनको भेजा गया ताकि यहां पे जो जीव गोस्वामी ने एक उन्नत भक्तों के लिए एक गुरुकुल खोला हुआ था, एक विद्यालय, विश्वविद्यालय खोला हुआ था, उसमें वो आके वैष्णव ग्रंथों को और विशेष करके षड गोस्वामियों को ग्रंथों को पढ़ सकें। तीनों भाई के समान यहां पर जीव गोस्वामी के आश्रय में रहे। जीव गोस्वामी ने उनको बहुत अच्छे अच्छे उपदेश दिए। तीनों ने ही समस्त ग्रंथों का अध्ययन बड़ी अच्छी तरह से किया। तीनों ही बड़े विद्वान थे और महान भक्त भी थे। तीनों श्री कृष्ण के नित्य पार्षद थे और आगे चल के फिर जीव गोस्वामी ने सोचा अब इनका प्रशिक्षण अच्छी तरह से हो गया है, जिन भक्तों ने इनको दीक्षा दी है उनकी भी इच्छा है और मेरी भी कि अभी बंगाल और उड़ीसा में ये प्रचार होना चाहिए, पुस्तक वितरण का कार्य आरंभ होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों से कहा था कि आप दुनिया भर में जाके पुस्तक वितरण कीजिए और इससे मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा, तो ठीक उसी प्रकार से जीव गोस्वामी ने इन तीनों से कहा, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु, कि आप बंगाल और उड़ीसा जाइए, शिव गोस्वामियों के ग्रंथ ले जाइए और वहां जाके खूब प्रचार कीजिए, क्योंकि उस समय मुद्रणालय तो नहीं हुआ करते थे, सब केवल अपने हाथों से लिखना पड़ता था, ऐसे थोड़े प्रतियां एक सारे बैलगाड़ी भर के, कई बैलगाड़ी भर के बल्कि वो यहां से ले गए बंगाल। और ऐसे हुआ कि रास्ते में ही एक डकैतों के राजा थे जिन्होंने ये समझ लिया कि इसमें कोई बहुत बड़ा धन है। ये धन तो था परंतु उस प्रकार का धन नहीं जो कि इस डकैत ने सोचा था, क्योंकि एक दो ज्योतिष ने कहा था कि कोई साधु लोग आ रहे हैं, उनके पास बहुत धन है, तो ज्योतिष को भी पता नहीं चला था कि किस प्रकार का धन है, केवल धन है इतना मालूम हो गया था। तो फिर ग्रंथों की चोरी जब हो गई तो तीनों भक्त जो हैं बहुत उदास हो गए और श्रीनिवास आचार्य वहीं पर बैठे रहे ग्रंथों को फिर से ढूंढने के लिए, और श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम दास ठाकुर आगे चले गए प्रचार के लिए। नरोत्तम दास ठाकुर उत्तर बंगाल में गए और श्यामानंद प्रभु उड़ीसा में गए। वहां जाकर श्यामानंद प्रभु ने खूब प्रचार किया, बल्कि आज में जो भी उड़ीसा में कृष्ण भक्ति की संस्कृति है प्राय उसका श्रेय श्यामानंद प्रभु और उनके प्रमुख शिष्य रसिकानंद देव गोस्वामी को जाता है। उन्होंने कईयों को वैष्णव बनाया, यहां तक कि मुसलमानों को, बड़े बड़े धनी जमींदारों को, योगियों को, अलग अलग वर्णों से भी ब्राह्मणों को, शूद्रों को, सबको वैष्णव बनाया। और बहुत ही तेजी से महाप्रभु का आंदोलन उड़ीसा में फैलता गया। उस समय पठानों ने आक्रमण किया था जगन्नाथपुरी के ऊपर और उन्होंने जगन्नाथ मंदिर का भी कब्जा कर लिया था, और जगन्नाथपुरी के लोग बहुत ही विचलित थे इसके कारण। फिर भी जब वहां एक बहुत ही शूरवीर सेनापति आए महाराज अकबर के, जिनका नाम था राजा मानसिंह, राजपूत थे, तो महाराज अकबर ने उनको वहां भेजा था। तो उन्होंने तो पहले एक समझौता कर लिया पठानों से और उनको मंदिर से बाहर किया, परंतु जब फिर से पठानों ने आक्रमण करके कब्जा कर दिया तो महाराज मानसिंह ने युद्ध किया उनके विरुद्ध और उनको वहां से भगा दिया और वो गए कटक में। तो कटक में भी पठानों की सेना को घेर कर राजा मानसिंह ने उनको हरा दिया। तो एक ओर राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से राजा मानसिंह ने वहां उड़ीसा और जगन्नाथपुरी की रक्षा की, दूसरी ओर श्यामानंद प्रभु और उनके अनुयायियों ने उड़ीसा की आध्यात्मिक संस्कृति और भक्ति की रक्षा की। आज भी श्यामानंद प्रभु और रसिकानंद प्रभु ये बहुत प्रसिद्ध हैं सारे उड़ीसा में। श्यामानंद प्रभु अपने अंतिम सालों में नरसिंहपुर में रहे, करीब करीब 100 साल की आयु पर उनका तिरुभाव हुआ और 4-5 स्थानों में उन्होंने मंदिर स्थापित किए हुए थे। और आज भी मिदनापुर में एक मठ है, गौड़ी मठ, जिसको श्यामानंद गौड़ी मठ कहते हैं। श्यामानंद प्रभु के पीछे इसका नाम रखा गया है। श्यामानंद प्रभु ने एक कीर्तन की पद्धति शुरू की जिसको रेनेती कीर्तन कहते हैं। उधर नरोत्तम दास ठाकुर ने मनोहर शाही पद्धति में कीर्तन आरंभ किया था। है तो कीर्तन ही भगवान का गुणगान, परंतु केवल कीर्तन की अलग अलग पद्धतियां थी। तो उस समय प्रचार की पद्धति अलग होती थी, वैसे खूब कीर्तन किया जाता था तरह तरह से, और फिर थोड़ा कुछ प्रचार किया जाता था, प्रवचन दिया जाता था। तो इस प्रकार से श्यामानंद प्रभु ने अपने गुरु महाराजों का आदर, उनके शब्दों का आदर किया और सारे उड़ीसा और दक्षिण बंगाल में खूब प्रचार किया कृष्ण भक्ति का। और चैतन्य महाप्रभु को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान वहां पर दिला दिया। जबकि चैतन्य महाप्रभु के तिरुभाव के बाद प्राय सभी लोग वहां से चले गए थे, महाप्रभु के तिरुभाव के बाद उनके अनुयायी इतने दुखी हो गए थे कि वो वहां रह नहीं पाए थे, और शनि शनि उनका भी तिरुभाव होता रहा। और फिर श्यामानंद प्रभु जब उड़ीसा में आए तो उन्होंने इस आंदोलन को फिर से जान दे दी, एक स्फूर्ति आ गई, उत्साह आ गया इस सारे प्रचार के कार्य में। इसलिए वैष्णव इतिहास में श्यामानंद प्रभु का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे बताया जाता है कि श्यामानंद प्रभु के गुरु थे हृदय चैतन्य, हृदय चैतन्य के गुरु थे गौरीदास पंडित। गौरीदास पंडित का नाम तो आप सबने सुना होगा। ये कृष्ण लीला में सुबल सखा थे, द्वादश गोपालों में से एक। भगवान श्री कृष्ण के अनेक ग्वाल बाल मित्र थे, उनमें से एक थे सुबल, सुबल सखा। तो जो कृष्ण लीला में वृंदावन में सुबल सखा हुए, वो महाप्रभु के लीला में, गौर लीला में, वो गौरीदास पंडित हुए। और वहां पर अंबिका कालना में वो निवास किया करते थे। अंबिका कालना में हुआ ये कि महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु एक बार जब आए थे तो गौरीदास पंडित ने उनसे निवेदन किया कि आप यहां से जाइए मत, आप यहीं पर रह जाइए। और महाप्रभु ने निकट में स्थित नीम वृक्षों की ओर इशारा करके कहा, क्यों चिंता करते हो, हम तो यहीं पर निवास करते हैं। तो फिर इशारा समझ गए गौरीदास पंडित और उन्होंने उन नीम वृक्षों के दारू से विग्रह बनाए, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के, बिल्कुल उनके जैसे दिखने वाले। और जब जाने का समय हुआ महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का, तो गौरीदास पंडित ने उनसे कहा कि मत जाइए, आप यहीं पर रहिए। तो फिर महाप्रभु ने उत्तर दिया था कि अरे गौरीदास, क्या तुम नहीं जानते हो कि हमें और हमारे विग्रह में कोई अंतर नहीं है? तो हम जब जाएंगे तो हमारे विग्रह तो रहेंगे ना तुम्हारे साथ, तो हम रहेंगे विग्रह रूप में। तो गौरीदास पंडित बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा मैं जानता हूं कि आप में और विग्रह में अंतर नहीं है, फिर ऐसा कीजिए आप रुक जाइए और विग्रह को जाने दीजिए। और ऐसा ही हुआ, फिर विग्रह उठे, वो चल पड़े और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु फिर वहां विग्रह बन गए। तो ये थे गौरीदास पंडित। और ये गौर निताय का मंदिर आज भी अंबिका कालना में है, और ऐसा बताया जाता है कि उस मंदिर के पास एक इमली का पेड़ है जिसके नीचे गौरीदास पंडित ने महाप्रभु के साथ बहुत लंबी चर्चा की थी। और उस मंदिर में एक भगवद गीता की प्रति है जो कि स्वयं महाप्रभु द्वारा लिखित है, और ऐसे कई महत्वपूर्ण चीजें वहां पर उस मंदिर में हैं। तो अंबिका कालना में हृदय चैतन्य भी रहा करते थे, वैसे इनका नाम था हृदयानंद। ये गौरीदास पंडित के शिष्य थे, प्रमुख शिष्यों में से एक थे। एक बार ऐसा हुआ कि गौरीदास पंडित आरती कर रहे थे गौर निताय के, और बाहर भक्त लोग बहुत ही जोरदार कीर्तन कर रहे थे, और इतना जोरदार कीर्तन सुन के सिंहासन पर स्थित गौर निताय कूद पड़े संकीर्तन में, और गौरीदास पंडित वहां बेचारे आरती कर रहे, देखते ही भगवान है ही नहीं, और भगवान कूद के चले गए संकीर्तन में। तो उनको बड़ा गुस्सा आया, तो उन्होंने हाथ में छड़ी ले ली और उनका पीछा करना शुरू किया। अब ऐसे कैसे कर सकते हो, यहां से कैसे जा सकते हो? और पीछे करते करते गौर निताय जो है, दोनों चार गौर निताय भी वहां पर आए हुए थे, प्रकट हो गए थे कीर्तन के द्वारा। तो गौर निताय इधर उधर भाग रहे थे गौरीदास पंडित से बचने के लिए। अंततः ऐसे बताया जाता है कि महाप्रभु गौरीदास पंडित से बचने के लिए उन्होंने आश्रय ले लिया सीधे हृदयानंद के हृदय में, हृदय में प्रवेश कर लिया। और फिर इसके बाद हृदयानंद का नाम हुआ हृदय चैतन्य। तो ये भी भगवान के पार्षद हैं, वो शुद्ध भक्त हैं, और उनके शिष्य थे श्यामानंद प्रभु। तो ऐसी परंपरा में आए गौरीदास पंडित। क्योंकि ये सुबल सखा हैं, इसलिए इनका भाव भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति सख्य भाव है, और हृदय चैतन्य ने भी इसी भाव को स्वीकार किया। वैसे गौरीदास पंडित विशेष करके नित्यानंद प्रभु के पार्षद माने जाते हैं, और दोनों के, महाप्रभु के भी, और हृदय चैतन्य भी सख्य भाव में थे। अब श्यामानंद प्रभु का जन्म एक शहर में हुआ, गांव में हुआ, जिसका नाम था धरेंद्र बहादुरपुर, जो कि बंगाल में था। थोड़े समय बाद उनके पिता कृष्ण मंडल उस शहर को छोड़कर चले गए दंडेश्वर नाम के एक गांव में, जो कि सुवर्ण रेखा नदी के तट पर है, जो कि उड़ीसा में है। और वहां पर श्यामानंद बड़े हुए, लेकिन उस समय उनका नाम श्यामानंद नहीं था। कृष्ण मंडल और उनकी पत्नी दुखिरी, इनके कई संतान हुए थे, लेकिन भगवान की योजना से जितने भी बच्चे हुए वो जन्म के तुरंत बाद मर जाते, इसलिए दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी थे। और इस बार जब इस बालक का जन्म हुआ तो उन्होंने सोचा कि इस बच्चे का नाम रखना चाहिए दुखी, ताकि यमराज कुछ कृपा करें और इस बच्चे के ऊपर कुछ ना करें, इस बच्चे से दूर ही रहें, क्योंकि आने पिछले इतने बच्चों ने उनको इतना दुख दिया था। सोचा कि इस बच्चे को दुखी नाम रख लें तो कम से कम इसको कुछ होगा नहीं। तो इस प्रकार से ये बच्चा बड़ा हुआ। वैसे कृष्ण मंडल की जाति थी सदगोप, ये बहुत ऊंची जाति नहीं मानी जाती थी, ये दूध वगैरह बेचा करते थे। और ऐसे इनकी जाति में साधारणतः लोग इतने विद्वान नहीं होते थे, शिक्षण आदि प्राप्त करने के लिए इतने योग्य नहीं होते थे। फिर भी ये बालक दुखी बहुत ही बुद्धिमान था, बहुत ही जल्दी उसने सब कुछ सीख लिया, व्याकरण आदि जो भी पढ़ाया जाता था गुरुकुलों में सब पढ़ लिया। इस बच्चे की स्मरण शक्ति बहुत अद्भुत थी, किसी चीज को एक बार सुनने पर वो तुरंत उसको याद रख पाते थे। तो बहुत ही जल्दी जब वो इतने बड़े पंडित हो गए और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये बच्चा इतना बुद्धिमान इतना विद्वान है, तो उनके माता पिता ने सोचा कि अभी इनको कोई योग्य गुरु के पास ले जाना चाहिए। श्यामानंद का जब जन्म हुआ था उस समय उनके माता पिता ने ठान लिया था कि इस बार अगर हमारा बच्चा जीवित रहेगा तो हम उसको श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित कर देंगे। वैसे कृष्ण मंडल भी कृष्ण भक्त ही थे और उन्होंने कृष्ण से यह वचन किया था, तो उनको याद था कि मेरे कर्तव्य पूरे हो गए, मैंने बच्चे को जन्म दिया, बच्चे को बड़ा किया, उसको शिक्षण दिला दिया, अब एक आध्यात्मिक गुरु चाहिए, व्याकरण आदि तो सीख गया, अब कृष्ण भक्ति आदि चल के सीखना चाहिए। तो उन्होंने दुखी से कहा कि देखो दुखी, अभी तुम थोड़े गौर से सोचो कि किन को तुम्हें चुनना है गुरु रूप में, जल्दबाजी नहीं करो, आराम से सोच लो। लेकिन दुखी ने अपने मन में ठान लिया था कि वो हृदय चैतन्य को ही गुरु बनाएंगे। हृदय चैतन्य के बारे में उन्होंने बहुत कुछ सुन लिया था और विशेष करके इस लीला के बारे में तो उन्होंने सुन लिया था जो अंबिका कलना में हुई थी। तो उन्होंने अपने माता पिता से अनुमति ली कि मुझे अंबिका कालना जाने दीजिए, वहां गंगा जी का दर्शन भी होगा, साथ साथ हृदय चैतन्य के आश्रय में मैं रह पाऊंगा और वहां गौरीदास पंडित जी के गौरताय मंदिर का दर्शन भी मैं कर पाऊंगा। तो पिता कृष्ण मंडल चिंतित थे, सोचा कि तुम इतने बड़े लड़के अभी तक हुए नहीं हो, अकेले इतने दूर जाओगे कैसे। फिर दुखी ने कहा कोई बात नहीं, यहां से जब बंगाल परिक्रमा के लिए या ऐसी यात्रा के लिए लोग जाते हैं तो मैं उनके साथ निकल जाऊंगा, तो कोई समस्या नहीं होगी। तो पिता मान गए और इस प्रकार से दुखी वहां से निकल पड़े और कई दिनों के बाद अंबिका कालना पहुंच गए। बहुत ही आतुरता से उन्होंने सबसे पूछा कि गौरीदास पंडित जी का मंदिर कहां पर है। बड़े खुशी से सभी ने बताया कि उस तरफ है, तो वह वहां गए, वहां उन्होंने दर्शन किया गौर निताई का, उस इमली के वृक्ष का, उस भगवत गीता के प्रति का, और उसके बाद में वो चले गए हृदय चैतन्य के पास। हृदय चैतन्य को बड़ी प्रसन्नता हुई इस बहुत ही शुद्ध बालक को देखकर। और जब दुखी ने निवेदन किया दीक्षा के लिए तो बड़े आनंदित होकर हृदय चैतन्य ने दीक्षा दे दी दुखी को। ऐसे योग्य शिष्य पाना भी बहुत मुश्किल होता है। भाग्यशाली वो गुरु होते हैं जिनको अच्छे शिष्य श्यामानंद की तरह या दुखी की तरह मिल जाते हैं, और भाग्यशाली वो शिष्य जिनको प्रामाणिक गुरु मिल जाते हैं कृष्ण के पास ले जाने के लिए। तो हृदय चैतन्य बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उनका नाम रख दिया कृष्णदास। तो इसके बाद वो दुखी कृष्णदास के नाम से जाने जाते थे, सभी लोग उनको दुखी कृष्णदास बुलाते थे। तो वहां पर थोड़े समय तक वो हृदय चैतन्य के आश्रय में रहे। हृदय चैतन्य ने जो भी अपने गुरु गौरीदास पंडित से सीखा था वो दुखी कृष्णदास को सिखा दिया। अनुमति लेकर दुखी कृष्णदास तीर्थ यात्रा पर गए, काफी लंबी यात्रा अनेक स्थानों में गए और फिर लौट कर आए, फिर से हृदय चैतन्य के पास में रहे। और एक दिन हृदय चैतन्य ने दुखी कृष्णदास को बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम वृंदावन जाओ, वहां जाके बड़े तीव्रता से भजन करो, वहां पर श्रीजीव गोस्वामी के आश्रय में रहो और उनसे प्रशिक्षण प्राप्त करो। तो वो अपने गुरु का संग त्यागना नहीं चाहते थे, फिर भी परंतु गुरु का आदेश है इसलिए अंबिका कालना छोड़कर वो वृंदावन की ओर चल पड़े। वृंदावन में जब आए तो ऐसे कहा जाता है कि सबसे पहले वो राधा कुंड पहुंचे। एक ब्राह्मण उनको वहां पर ले गए थे। वहां उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी का दर्शन किया। जब रघुनाथ दास गोस्वामी और कृष्णदास गोस्वामी को समझा कि ये लड़का जो है दुखी कृष्णदास, ये हृदय चैतन्य के शिष्य हैं और हृदय चैतन्य ये तो गौरीदास पंडित के शिष्य हैं, तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। उनको बड़े प्रेम से उनको उनका स्वागत किया, उनको अच्छी तरह उनका देखभाल किया। वैसे गौरीदास पंडित जो हैं वो सूर्यदास सरखेल के छोटे भाई हैं, और सूर्यदास सरखेल की बेटी का नाम कोई जानते हैं? कोई बता सकते हैं? जानवा माता। और जानवा माता का विवाह नित्यानंद प्रभु से हुआ था। तो इस प्रकार से गौरीदास पंडित का नित्यानंद प्रभु के साथ इतना निकट का संबंध था, क्योंकि गौरीदास पंडित के बड़े भाई सूर्यदेव सारखेल की बेटी जानवा माता थी, जिनका विवाह नित्यानंद प्रभु से हुआ। तो ये सब बातें कविराज गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी जानते थे, और उन्होंने सुना कि गौरीदास पंडित के ये शिष्य के शिष्य हैं, उनको बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने विशेष एक भक्त, दो तीन भक्तों को बुलाया और कहा कि यहां दुखी कृष्णदास को जीव गोस्वामी के पास वृंदावन में ले जाओ। उस समय यहां सेवा कुंज में जीव गोस्वामी रहा करते थे। स्वयं रूप गोस्वामी ने उनको राधा दामोदर की मूर्ति दी थी, तो जीव गोस्वामी ने यहां पर राधा दामोदर मंदिर की स्थापना की थी, और सेवा कुंज में ही रास मंडल में वो अपना भजन करते थे, ग्रंथों की रचना करते थे, सेवा करते थे। और उस समय श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर आ चुके थे। इन तीनों में से ऐसे बताया जाता है कि उम्र में सबसे ज्यादा थे श्रीनिवास आचार्य। श्रीनिवास आचार्य का जन्म महाप्रभु के तिरुभाव के करीब 10 साल पहले हुआ, और नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म भी महाप्रभु के तिरुभाव के थोड़े पहले हो गया। परंतु श्यामानंद प्रभु का जन्म या तो उसी साल में हुआ या एक साल बाद हुआ महाप्रभु के तिरुभाव के। महाप्रभु का जन्म कब हुआ आविर्भाव बताइए? 1486 में। और कितने साल प्रकट लीला हुई महाप्रभु की? 48 साल। अर्थात किस वर्ष में उनका तिरुभाव हुआ? 1534। तो कहा जाता है कि इसी वर्ष में श्यामानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ, या तो इस वर्ष में या उसके एक वर्ष बाद में। तो श्यामानंद प्रभु यहां पर पहुंचे, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर थे यहां पर, तो जीव गोस्वामी भी बड़े प्रसन्न हुए दुखी कृष्णदास को देखकर। और तीनों यहां नरोत्तम दास, श्रीनिवास और दुखी कृष्णदास भाई की तरह रहे। जीव गोस्वामी ने उनको बहुत सिखाया, साधारण से साधारण सेवा भी ये किया करते थे तीनों। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम नित्य पार्षद हैं भगवान के, हम इतने विद्वान हैं, हम बड़े भक्त हैं, इसलिए हम कोई छोटी सेवा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। वृंदावन का भाव ही है कि हम वैष्णवों की सेवा करें। फिर भगवान बाद में आएंगे, राधा रानी बाद में आएंगी, सबसे पहले है वैष्णवों की सेवा करना। राधा कृष्ण ही वैष्णवों के माध्यम से प्रकट होते हैं, अन्यथा नहीं। तो दुखी कृष्णदास भी इसी प्रकार से वैष्णवों की सेवा करते थे। उनकी एक नित्य सेवा थी, सूर्योदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त के समय ही वो रास मंडल के इलाके में वो झाड़ू मारा करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि बहुत सारे भक्त आते हैं, वो परिक्रमा आदि करते हैं, तो कहीं उनके चरणों में पत्थर आदि या कांटे आदि चुभ न जाए, तो इसलिए वो रोज स्पर्श किया, वो साफ किया करते थे वो जगह। और एक बार ऐसे हुआ कि साफ करते करते उन्होंने एक बहुत ही चमकती हुई चीज को देखा और देखा कि ये तो एक नूपुर है। अरे ये किस प्रकार का नूपुर है, बहुत ही तेजस्वी था और इस दुनिया का नूपुर नहीं लग रहा था ये। तो फिर उन्होंने जैसे ही उठाया तो दो बहुत ही प्रकाशमान तरुणियां वहां पर आईं, गोपियां, और वो थी ललिता और विशाखा। कहने लगी, ये दे दो हमें वापस, ये हमारी बड़ी बहन का है। कौन है तुम्हारी बड़ी बहन, उनका नाम नहीं बताया, तो कौन है बड़ी बहन, श्रीमती राधा रानी। तो बड़े चतुर थे दुखी कृष्णदास, उन्होंने कहा कि हम यूं ही किसी को नहीं देंगे, हम सीधे आपके बड़े बहन के हाथ में देंगे। तो फिर ऐसे कहा जाता है कि ललिता और विशाखा देवी ने दुखी कृष्णदास की आंखों के ऊपर एक पट्टी बांध दी और उनको ले गए, और वहां जाकर स्वयं श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में उन्होंने वो नूपुर बांध दिया। परंतु इसके पहले उस नूपुर का स्पर्श उन्होंने अपने कपाल से कर दिया और उस स्पर्श की वजह से एक तिलक का दाग बन गया, जो वो तिलक का आकार जो है वो साधारण गौड़ी वैष्णव तिलक के आकार से थोड़ा अलग है, इसको श्यामानंद तिलक ही कहते हैं और इसको नूपुर तिलक भी कहते हैं, क्योंकि नूपुर के श्रीमती राधा रानी के नूपुर के स्पर्श से यह हुआ। और उसके बाद यह प्रश्न आया कि अरे श्यामानंद, अरे अरे दुखी कृष्णदास, ये इस प्रकार का तिलक क्यों धारण किया है आपने। जीव गोस्वामी ने सबसे पहले पूछा तो सारी बातें बताई दुखी कृष्णदास ने जीव गोस्वामी को। जीव गोस्वामी को बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा कि तुम वास्तव में श्रीमती राधा रानी के बहुत निकट हो, तुमने बहुत आनंद दिया है श्रीमती राधा रानी को, इसलिए मैं तुम्हारा नाम रखता हूं श्यामानंद। बल्कि श्रीमती राधा रानी ने दिया हुआ ही नाम है। तो इसके बाद दुखी कृष्णदास का नाम हो गया श्यामानंद। वे इसके बाद कई कथाएं हैं, सब अलग अलग कथाएं हैं, लेकिन उतने प्रामाणिक नहीं है, इसलिए हम उनको इस समय दोहराएंगे नहीं। परंतु इतना कहना उचित है इस समय कि दुखी कृष्णदास का नाम परिवर्तित हुआ और श्यामानंद उनको ये नाम, ये पदवी दी गई। उधर श्रीनिवास को जीव गोस्वामी ने पदवी दी थी आचार्य का, तो श्रीनिवास बन गए थे श्रीनिवास आचार्य। और नरोत्तम दास को जीव गोस्वामी ने पदवी दी थी ठाकुर या महाशय, तो वो बने थे नरोत्तम दास ठाकुर। और इधर दुखी कृष्णदास बन गए श्यामानंद पंडित। तो जीव गोस्वामी ने अपने शिक्षा शिष्यों को इस प्रकार से सम्मानित किया सारे भरे वैष्णव सभा में, यहां वृंदावन में। वहां वृंदावन में केवल यही चलता था उस समय, आजकल बहुत कुछ और भी चलता है, परंतु जिस समय यहां पर षड गोस्वामी रहा करते थे उस समय केवल वैष्णवों की सभा में ऐसे लोग इकट्ठे होते थे, दिन रात कृष्ण कथा कृष्ण सेवा ही चलता था। उस समय ना तो लोई बाजार था, उस समय यहां ना तो और कोई सब सामने की दुकानें थी, न मोटरसाइकिल न गाड़ी न ऐसे कुछ नहीं था, यह बहुत ही रमणीय वातावरण था। और ऐसे वातावरण में ब्रज में यहां गोस्वामी रह के भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की सेवा किया करते थे। तो श्यामानंद प्रभु फिर बाद में गए बंगाल और उड़ीसा जैसे कि हम पहले कह चुके हैं वहां बहुत प्रचार किया। वहां गोपी बल्लभपुर ने उन्होंने गोपी जन बल्लभ विग्रह स्थापित की जो उन्होंने फिर अपने शिष्यों को दे दिया आगे चलाने के लिए। यहां पर उन्होंने राधा श्याम सुंदर की स्थापना की और आज भी ये मंदिर बहुत विख्यात है। राधा श्याम सुंदर मंदिर के पास ही उनकी पुष्प समाधि है और श्यामानंद प्रभु का तिरुभाव हालांकि ओडिशा में हुआ, ऐसे कहते हैं कि शायद नरसिंहपुर में हुआ होगा, परंतु उनकी पुष्प समाधि यहां पर राधा श्याम सुंदर मंदिर के पास में ही है। तो श्री श्यामानंद प्रभु का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज उनका तिरुभाव की तिथि है तो उनके चरण कमलों में हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वो भी हमारे ऊपर कृपा करें कि हम भी उनके चरण कमलों में चल सकें, पद चिन्हों में चल सकें और हम भी कृष्ण भक्त, शुद्ध कृष्ण भक्त हो जाएं। श्रील श्यामानंद प्रभु की जय। श्रील श्यामानंद प्रभु तिरुभाव दिवस की जय। तो कोई टीका या टिप्पणी प्रश्न आदि है? दो चार मिनट बचे हैं। हाँ जी जो उनके नाम पे ऊपर जो वाद हुआ था क्या वो प्रमाणित नहीं है? हाँ, अलग अलग कथाएं हैं इसलिए हमने उनके बारे में आज चर्चा नहीं की क्योंकि अलग अलग चीजें कही जाती हैं, परंतु इतना है कि अवश्य जीव गोस्वामी ने उनका पूरा मुद्रा लगा दिया, छाप लगा दिया अधिकार कि ये अधिकृत है, इनका नाम श्यामानंद है। और आगे चल के यहां जो भी वैष्णव समाज था, वैष्णव समाज ने भी स्वीकार कर दिया। लेकिन श्यामानंद नाम जब जीव गोस्वामी ने उनको दिया और उसके बाद जो घटनाएं हुई उनमें काफी कुछ अंतर है कथा, अलग अलग कथाओं में। और ये भी कई लोग कहते हैं कि हृदय चैतन्य यहां पर आए और उन्होंने सोचा कि जीव गोस्वामी ने कैसे दूसरी दीक्षा दे दी, नाम कैसे बदल दिया। नाम बदलना मतलब दीक्षा देने के बराबर हो जाता है, तो दीक्षा तो दो बार नहीं ली जाती। तो इस प्रकार से ऐसे लोग कहते हैं, परंतु इसके बारे में अधिक प्रमाण नहीं है इसलिए हम इसी बात तक संतुष्ट रहते हैं कि जीव गोस्वामी ने स्वयं श्यामानंद प्रभु को ये श्यामानंद नाम प्रदान किया। और कोई बात, प्रश्न या टीका? हाँ जी, हाँ जी, रेनेती 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 स्टाइल, लेकिन वो अभी रेनेती पद्धति का कीर्तन रहा नहीं मेरे ख्याल से, अब तो कोई जानता नहीं है। मनोहर शाही कीर्तन जो नरोत्तम दास ठाकुर का था वो भी थोड़ा बहुत तो है, प्रचलित है अभी भी, परंतु रेनेती कीर्तन मेरे ख्याल से अब उतना प्रचलित नहीं है। ज्यादा प्रसिद्ध नरोत्तम दास ठाकुर का मनोहर शाही कीर्तन हो गया। हाँ जी, जी? राधा श्याम सुंदर, हाँ, इनकी स्थापना तो इन्होंने की थी, श्यामानंद प्रभु ने ही की थी। श्याम, हाँ वो तो अभी कथा है, हाँ वो भी है ऐसा कहते हैं। ठीक है, श्री श्यामानंद पंडित की जय। श्री श्यामानंद प्रभु तिरुभाग दिवस की जय। गौर प्रेमानंदे।